शांति। मुरलीधर बाप के, मुरलीधर बच्चे, आदरणीय राजयोगी भ्राता राजू भाई जी हम सब के बीच में पधारे हैं। हम भ्राता जी का एक हाथ हिलाकर स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। आप यूपी की धरनी पर कानपुर के पास स्थित एक छोटे से गांव से निकले ईश्वर के अनमोल रत्न हैं, लेकिन अध्यात्म जगत में आप बड़ी बड़ी क्रांतियां करने के निमित्त बने हैं। आपका यह सौभाग्य रहा कि बाल्यकाल से ही आपके घर में ईश्वरीय गतिविधियां आरंभ होने के कारण आपका लालन पालन पोषण पढ़ाई सब उस ईश्वरीय वातावरण में होती रही। तो लौकिक और अलौकिक दोनों पढ़ाई पढ़ते हुए आप बड़े हुए और 1971 में पहली बार मधुबन की धरनी पर कदम रखा। और जैसे हर एक के साथ होता है, मधुबन धरनी की छाप दिलो दिमाग पर छप जाती है, लगता है कि वापस नहीं जाए। कुछ ऐसी ही फीलिंग आपकी थी, लेकिन पास में कोई परमिशन लेटर तो था नहीं और इसलिए जाना पड़ा। और अगले वर्ष 1972 में जब आए तो यज्ञ में समर्पित होने का पेरेंट्स से परमिशन लेटर लेके आए। और 1972 से आज दिन तक इस धरनी पे रहकर आप अपनी ईश्वरीय सेवाएं कर रहे हैं। बहुत लंबा काल है 72 से आज दिन तक। इस लंबे काल में आपने विविध सेवाओं में अपना योगदान दिया है। आरंभ में तो आप विविध सेवाओं में अपना योगदान देते रहे, जब जो सेवा कह दी गई वो करने लगे, लेकिन 76 में बाबा ने आपको एक विशेष सेवा के लिए निमित्त बनाया। और वो कौन सी विशेष सेवा रही होगी आप गेस कर सकते हैं? कौन सी? मुरलियों से संबंधित, जिसके कारण ही आप पूरे ब्राह्मण परिवार में किस नाम से प्रसिद्ध है? मुरली वाले राजू भाई। तो जो मुरलियां सिंधी में हुआ करती थी उसे हिंदी में करना और पोस्टिंग में सहयोग देना, ये आपको सेवा मिली, जिस सेवा को आप आज दिन तक बखूबी निभा रहे हैं। और चूंकि बाबा की मुरलियों को टाइप करने के लिए सदा ही आपकी अंगुलियां टाइपराइटर या कीबोर्ड की कीज पर सदा नृत्य करती रही, तो उसका असर ये हुआ कि दिलो दिमाग पर भी वो मुरलियां छपती चले गई। और फिर उसका परिणाम ये आया कि आपने अव्यक्त मुरलियों के आधार पर एक बहुत सुंदर टॉक शो किया जिसका नाम है अमूल्य रतन। 1300 से भी अधिक एपिसोड आप कर चुके हैं और आप सभी भाई बहनें उसका अवश्य लाभ उठाते होंगे। इतना ही नहीं, आप ग्रामीण विकास प्रभाग के वाइस चेयरपर्सन भी हैं, जिसके अंतर्गत शाश्वत यौगिक खेती का एक नया कंसेप्ट किसान जगत को दिया, जिसके भी बहुत वंडरफुल चमत्कार देखने में आ रहे हैं। इतना ही नहीं, मधुबन के अंदर हिंदी टाइपिंग, फोटो कॉपी, स्टेशनरी आदि आदि से संबंधित डिपार्टमेंट आपके निर्देशन में चलता है। दादियों के पास जो पत्र आते हैं उसको रिस्पॉन्ड करने का दायित्व भी आपके कंधों पर होता है। और मूल्यों पर बहुत छोटी छोटी पुस्तकें भी आप तैयार करते हैं। पहले तो पत्र पुष्प भी आप कंपोज करते हैं जो सभी सेंटरों पर जाता है, जिसमें ही अव्यक्त इशारे होते हैं, जो मुरली के बाद प्रतिदिन एक इशारा पढ़ा जाता है और साथ साथ कई सारी छोटी छोटी बुकलेट्स बाबा के महावाक्यों का एक पर्टिकुलर विषय पर संकलन से संबंधित आप छपाते रहते हैं और ब्राह्मणों को लाभान्वित करते रहते हैं। इतना ही नहीं, पूरे देश और दुनिया में भ्रमण करते हुए जो मुरलियां आपके दिलो दिमाग में छपी हुई है, उनकी स्पष्टता जो आपके हृदय में है, वो सब के पास पहुंचकर भट्टियां कराते हुए सबको लाभान्वित करते रहते हैं। और आज हमारे बीच में है हम सबको लाभान्वित करने के लिए। और आज का बहुत सुंदर विषय है जो बाबा कहते हैं, मैंने आप सबको एक महामंत्र दिया हुआ है। कौन सा? मन मना भव। तो इस महामंत्र का हम अभ्यास कैसे करें, इसके अनुभवों के क्या लाभ होते हैं, इन सब बातों पर प्रकाश डालेंगे हमारे आदरणीय भ्राता राजू भाई जी। सुनते हैं भ्राता जी से। आदरणीय भ्राता जी,
ओम शांति। बाबा ने आप सबको अपने इस तपस्या भूमि में सूक्ष्म वतन का अनुभव करने के लिए बुलाया है। सूक्ष्म वतन कैसा होगा, आबू को देख करके आपको अच्छा अनुभव होता होगा। बादलों के बीच में, शीतल हवाओं के बीच में तपस्या करने का अपना ही मजा होता है। अच्छा लग रहा है ना सबको? अच्छी तरह से 3 दिन तक मन मना भव के महामंत्र की विशेष प्रैक्टिस कर ली। बाबा कहता है ये तो संस्कृत शब्द है, मैं महामंत्र देता हूं तुम मुझे याद करो बस। गीता के अनुसार मन मना भव आदि में और अंत में भगवान अर्जुन को कहते हैं मन मना भव, मन मेरे में लगा। और अर्जुन क्या कहता है, मन बड़ा चंचल है, मन एकाग्र ही नहीं होता, वो तो भागता रहता है घोड़े की तरह, उसको एकाग्र करने में बहुत मेहनत है। तो आप लोगों को तो मेहनत नहीं लग रही ना? लगती है थोड़ा थोड़ा, यहाँ इजी रहता है, घरों में नहीं रहता है। लेकिन अगर अभ्यास अच्छा करके जाएंगे तो मन तो अपनी आत्मा की चैतन्य शक्ति है, लेकिन बाबा ने हम सबको श्रीमत दी है कि मन को मारना नहीं, मन का काम है चलना, भागना, उड़ना। आप बच्चे इस वाहन का सही प्रयोग करना सीख जाओ। भक्ति में एक शब्द देते हैं, अंतर मन वाहन, अंतःवाहक शरीर। कौन सा है वो? वो मन ही तो है। अंदर क्या है? आत्मा की मन संकल्प शक्ति। और वो संकल्प शक्ति अगर हमारे कंट्रोल में है तो ये मन बहुत अच्छे अच्छे सैर कराता है, जहाँ चाहिए वहाँ ले जाता है। और अगर कंट्रोल से थोड़ा बाहर चला गया तो परेशान करता है, डिप्रेशन में ले जाता है, कितने नुकसान हो जाते हैं। मन की चंचलता से ही आज कितने अपराध हो रहे हैं, कितने गलत कार्य हो रहे हैं। पूछो अगर भाई ऐसा क्यों किया, कितना क्या करूं, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, मन की उत्तेजनाओं को शांत नहीं कर पाया। इसलिए अगर कभी आप लोग जेल को, जो वहां पर कैदी हैं, उनके पास जाओ, उनसे पूछो भाई आपको जेल क्यों हुई, आपको सजा क्यों मिली, तो कई तो ऐसे होते हैं तो बाबा उनको कहते हैं तो जेल बर्ड है, जेल से निकलेगा फिर जेल में चला जाएगा। लेकिन कोई कोई छोटे छोटे अपराध करके सजाएं भोग रहे हैं, और उनके पास अगर जाओ और उनसे मिलो तो बस उनके अंदर से यही आता है कि मैं चाहता नहीं था, मेरे से हो गया, परवश स्थिति। एक बार मैं यूपी में एक बहुत बड़ी जेल गाजियाबाद की है, तो मैंने वहाँ पर एक बहुत अच्छा मेडिटेशन रूम बनाया था जेल के अंदर, के अधिकारी गण यहाँ आए थे ज्ञान, तो मेरे से कहते हैं आपने जेल तो देखी नहीं, चलो आपको चक्कर लगवाते हैं जेल की। बहुत बड़ी जेल थी, तो उस जेल में जब हमको ले गए तो पहले पहले एक दरवाजा खुलवाया जिसमें बच्चे थे, छोटे छोटे अंडर एज, 16 साल 17 साल की उम्र के नीचे के बच्चे। तो मेरे मुख से अचानक निकला, भाई इन्होंने क्या किया, तो अबोध हैं, ये तो अनजान बच्चे हैं। बहुत भोले थे, सीधे साधे लग रहे थे। जब वो साहब और हम गए अंदर, घुसे, गेट खोला तो सब खड़े हो गए, अपने प्यार से देखा तो साहब ने कहा ओम शांति, तो बोले ओम शांति। तो मैंने जब पूछा कि भाई इनको क्यों जेल में रखा, इन्होंने क्या किया इतनी छोटी उम्र में, तो कहते हैं आप ही इनसे पूछ लो। तो मेरी कुर्सी डाली वहां, बिठा दिया मुझे, बुलाया बच्चों को। जब मैंने पूछना शुरू किया तो सब रोए, कहें भाई मैं चाहता नहीं था, मेरे से ऐसी गलती हो गई, कोई कोई गलती, कोई कोई छोटी छोटी गलतियों से जेल में 400 बच्चे थे। तो मुझे बड़ा आया कि देखो आज आत्मा कितनी मन की गुलाम बन गई है, परवश मन की गुलाम है, इंद्रियों के गुलाम। पहले तो मन है ना, इंद्रियां क्या है, मन और इंद्रियों की बहुत दोस्ती है। अगर जरा भी मन चंचल है तो इंद्रियों में उत्तेजना आएगी, और मन अगर हमारा कंट्रोल में है तो इंद्रियां क्या, तो जड़ है, वो कुछ नहीं करेंगी, शांत है। लेकिन मन को अगर हम सही दिशा नहीं देते, उसकी गति पर ध्यान नहीं देते, जो मैं कह रहा हूं सुनना ध्यान से, एक दिशा नहीं देते और एक उसकी गति पर ध्यान नहीं दे पाते, तो कहीं ना कहीं उसकी फास्ट गति आत्मा को परेशान कर देती है, और गलत दिशा में चला गया तो नुकसान बहुत होता है। कई बार बाबा के बच्चे बनने के बाद भी कईयों से ऐसे कर्म हो जाते हैं जिनका बहुत पश्चाताप करना पड़ता, चाहते नहीं है, श्रीमत की अवज्ञा हो गई, गलत हो गया। अब पश्चाताप करना, पश्चाताप के बाद वो खुशी गायब हो गई, उमंग खत्म हो गया, तो ये सब सजाएं हैं ना। इसलिए बाबा अपने बच्चों को कहते हैं मन जीते जगत जीत। पहले की मुरलियों में आता था साकार में, बाबा ने कहा बच्चे मन को क्या जीतना, मन तो आपका है, माया जीते जगत जीत। लेकिन फिर देखा है तो मन इनका इतना अनकंट्रोल हो जाता है जो कितने गलत काम करते, इसलिए कहा पहले मन को जीतो। तो मन को जीतना कोई युद्ध करके नहीं, युद्ध करके सब चीजों को नहीं जीता जाता है। कहते हैं कोई से स्नेह होता ना, तो कहते हैं इसने तो मेरे दिल को जीत लिया। कई बार दादियां कहते तूने तो मेरे दिल को जीत लिया, हमने बाबा के दिल को जीत लिया। कैसे जीत लिया, युद्ध करके, उनकी आज्ञाकारी बन के, उनकी श्रीमत पर चल के, उनकी बातों में हाजी करके उनके दिल को जीत लिया। तो मन को जीतने के लिए क्या करेंगे, युद्ध, बहुत प्यार करो उसको, स्नेह दो, अच्छा अच्छा भोजन खिलाओ। एक स्थान पर मैं गया था, एक भाई ने 2 घोड़े रखे थे और घोड़ों को बड़ा प्यार करता था, उनको अच्छी तरह से खाना खिलाता, अपने हाथ से दाना खिलाता, मालिश करता, छोटे छोटे ही थे लेकिन उसके इतने आज्ञाकारी थे। तो जब मैं उसके फार्म हाउस में गया, विदेश की बात है, तो उसने घोड़ों की तरफ, बहुत दूर थे, उनको आवाज दी इंग्लिश में ही, और वो आए दौड़ करके सामने आके कहता है ये माउंट आबू हुसैन का वेलकम करो, घोड़ों को कहता है वो। तो ऐसे करते हो, ऐसे ऐसे ऐसे। तो मैंने कहा तूने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है, ये तेरे इतने कंट्रोल में रहते हैं जो इतने आज्ञाकारी कैसे बन गए और इनको क्यों रखे हो तुम। तो बहुत अच्छा उत्तर दिया उसने, कहता है बाबा कई बार कहता है ना मन घोड़ा है, बहुत तंग करता है, बहुत भटकता है। जब वो घोड़ा जानवर हमारे कंट्रोल में आ सकता है तो मेरा मन कंट्रोल में क्यों नहीं आ सकता है। मैं इसके साथ अपने मन की तुलना करता हूं, इसको मैंने कैसे कंट्रोल किया। जानवर को कंट्रोल मैंने कर लिया, बहुत प्यार से उसको अपने हाथ से सहलाता हूं, मालिश देता हूं, प्यार करता हूं, अपने हाथ से दाना खिलाता हूं, इतना आज्ञाकारी हो गया। कहीं भी रहे, कितना भी दूर हो, जब आवाज दो सामने आ जाता भाग करके। तो हमारा मन अपना है, मन मेरा है ना, तो हमारा मन कैसे कंट्रोल में रहेगा। उसको अच्छा भोजन दो, अच्छा प्यार दो, स्नेह से बातें करो। ब्रह्मा बाबा ने मन को कंट्रोल करने के लिए क्या किया मालूम है? सुना होगा बाबा की एक डायरी मैंने कुछ समय पहले बताई, लिखी है, लिखी थी माना उनकी 32 की डायरी, 1932 में जब बाबा ने गुरु किए हुए थे और जब गुरु के ध्यान में बैठते थे तो साकार मुरलियों में बाबा कई बार अपने वो अनुभव सुनाते हैं कि मन बहुत भटकता था, एकाग्र नहीं होता था। तो कभी मैं अपने को चमाट मार लेता था, कभी ऐसे चुटकी काट लेता था। क्यों भटकता है, किस लिए भटकता है, गुरु का ध्यान क्यों नहीं करने देता है। लेकिन बाद में बाबा ने अपने आप से बातें करना शुरू कर दिया, दरबार लगाना शुरू किया। और वो दरबार ऐसी लगाई जैसे राजाओं की दरबार लगती है, राजा एक गद्दी पर बैठा है, उसके जो अलग अलग स्टेट्स के मंत्री हैं वो अलग अलग गद्दी पर बैठे हैं और एक एक मंत्री से पूछता है तुम्हारे तरफ सब ठीक ठाक चलता है, कोई प्रकार का उपद्रव तो नहीं है, कोई आवश्यकता तो नहीं है। तो एक एक बोलता है, अपना जवाब देता, क्योंकि बाबा का उस समय राजाओं से बहुत अच्छा कनेक्शन था, जवाहरात का बिजनेस था, जवाहरी थे, तो राजाओं के पास रानियों को जवाहरात से बहुत प्यार था। इसलिए बाबा कभी नेपाल के राजा के पास, कभी उदयपुर बड़ौदा इनके राजाएं जो बड़े बड़े राजाएं थे उनके घरों में जाते थे ज्वेलरी देने के लिए। तो कभी कभी वो बोल देते थे दरबार चल रही है, आप दरबार में आके बैठो देखो, तो बाबा वो दरबार देखते थे। तो बाबा ने अपनी दरबार लगाना शुरू कर दिया और दरबार में आत्मा राजा बैठी है सिंहासन पर, एक तरफ मन बुद्धि संस्कार और साथ साथ आंख नाक मुख कान हाथ जो मूल ज्ञान इंद्रियां हैं वो सब सामने हैं। कोई ना कोई इंद्रिय धोखा देती, कोई कहता है मेरी आंख धोखा देती है, देख लिया मन चंचल हो गया, बुद्धि खराब हो गई, वृत्ति भटक गई, कोई की जबान धोखा देती है, देख लिया खाने की चीज अच्छी लगती है खा लिया, भले स्वास्थ्य बिगड़ गया, डॉक्टर ने मना किया था फिर भी नहीं कंट्रोल कर पाए। कोई की जबान धोखा देती है, कोई में कनरस की इतनी आदत है, कोई बात अगर व्यर्थ सुना रहा है पर चिंतन कर रहा है तो कान में बड़ा रस आता है, इंटरेस्ट से सुनते फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ। तो बाबा ने इन सब कर्म इंद्रियों से बात करना शुरू कर दिया और वो डायरी लिखते गए अपने हाथ से, बहुत प्यार से बात करते थे, मन मेरे वजीर तो मेरा कहना सुनता क्यों नहीं है, क्यों भटकता है, क्या चाहिए तुझको, तुम्हारे लिए सब कुछ है, तो मुझे गुरु का ध्यान करने दे, अभी नहीं भटक बाद में देखेंगे। तो बाबा ने ऐसे बहुत प्यार से अपने ऊपर मेहनत की और मेहनत करके मन और बुद्धि को अपने कंट्रोल में ले लिया। और मन बुद्धि कंट्रोल में आ गए तो इंद्रियां क्या करेंगी, ये सब कंट्रोल में आ गए। ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा के आने के पहले ये सब शिव बाबा की तरफ से ही हो रहा था, इंद्रियों को शीतल कर दिया, पावन बन गए। वैसे शिव बाबा कहता मैं पतित तन में आता हूं, तन तो पतित ही है, लेकिन जब शिव बाबा आए हैं तब तक ब्रह्मा बाबा ने अपने आप पर संपूर्ण जीत प्राप्त कर ली, कर्म इंद्रिय जीत बन गए। इसलिए आप देखेंगे, इतिहास तो पढ़ा होगा, आप सब कलकत्ता वाले हैं, बताने की जरूरत नहीं, मैं समझता हूं कलकत्ता में ही बाबा थे और कलकत्ता में रह करके ये सब कुछ किया है। अपनी 60 वर्ष की आयु तक तो कलकत्ता में रहे, और उसके बाद जब बाबा का अनुभव हुआ, प्रवेशता हुई, तो हैदराबाद में रहे। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने जब बाबा का वो रथ बने, तब तक वो आत्मा बिल्कुल स्वच्छ पवित्र बन चुकी थी। इसलिए कोई भी बाबा के सामने आता था, उनकी पवित्र वाइब्रेशन, उनकी दृष्टि पढ़ते ही वो ट्रांस में चला जाता था और श्री कृष्ण का अनुभव होने लगता था। अगर वो आत्मा ऐसी होती तो श्री कृष्ण का अनुभव, भले शिव बाबा कहता मैं साक्षात्कार कराता हूं, लेकिन वो सामने जो आत्मा है उसकी स्थिति भी इतनी अच्छी चाहिए ना, तब तो साक्षात्कार होगा। तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा लोगों को श्री कृष्ण के साक्षात्कार होते थे। बैठे यहां हैं लोग, दूर दूर श्री कृष्ण का अनुभव कर रहे हैं। कभी ब्रह्मा बाबा सामने आता है, कभी वो गुम हो जाता है तो श्री कृष्ण सामने आता है। तो कहने का मेरा भाव है, मन मनाभव का मंत्र जो हमारे मन को कंट्रोल कर दे, उसके लिए हमें अभ्यास करना है। आत्मा राजा बन करके अपने भ्रकुटी आसन पर बैठे और फिर वो किधर जा रहा है उससे बात करे, देखे तो, मारो नहीं, देखो तो, कम से कम अपनी बुद्धि के दिव्य नेत्र से देखो। मैं बैठा यहां हूं, मैं एक घंटा योग के लिए बैठा हूं, और बैठे बैठे वो कहां कहां सैर कराता, जहां भी कोई कनेक्शन है, संबंध है। और विशेष करके आप देखेंगे ना, दो स्थानों पर जल्दी जाता है। एक जिधर कोई से कोई थोड़ा सा स्नेह ज्यादा होता, लगाव जिसको हम कहते हैं, कोई बच्चा है, कोई संबंधी है, कोई स्नेही है, कोई सहयोगी है, कोई रूपवान है, कोई गुणवान है, कोई मददगार है, कोई भी प्रकार से बैठे हैं, उसकी याद, उसकी छवि, उसने समय पर साथ दिया है, तो मन उधर भटक जाता है। और दूसरी तरफ अगर किसी से आप वैर ले लो, विरोध हो जाए, टकराव हो जाए, मन मुटाव हो जाए, अब बैठो, वो व्यक्ति आएगा, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, बैठे हैं योग में और मन दोनों तरफ भटक रहा है। एक तरफ साधन है, सुविधाएं हैं, संबंध है, एक तरफ बहुत अच्छे संबंधों की तरफ और एक तरफ बिल्कुल गलत संबंधों की तरफ बुद्धि भटक रही है, मन भी भटक रहा है। तो अभी वर्तमान समय हम सबको इस पर बहुत अटेंशन देना है। जब मुझे सर्व प्राप्तियां एक बाबा से हो रही हैं, जब हमने कहा है मेरा संसार मेरा बाबा है, कहा है ना सबने, नहीं है? संसार में क्या है, दो ही चीजें, एक व्यक्ति, एक वस्तु। व्यक्तियों के संबंध में सब संबंध बाबा के साथ हमारे हैं, और वस्तुओं में अपने बच्चों के लिए बाबा ने कोई अप्राप्ति रखी नहीं है, सब कुछ प्राप्त कराया, जो आवश्यकताएं हैं सब की पूरी हुई हैं। बाबा का बच्चा बना है, गरीब से गरीब हो, आप देखेंगे बाबा का बच्चा बनने के बाद उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया, गरीबी ऐसे लगती नहीं है। भले उसकी कमाई कम है, कोई ऐसे साधन सुविधाएं भी न हो, लेकिन वो बहुत साहूकारी का अनुभव करता है, क्योंकि उसके व्यर्थ खर्च नहीं है, थोड़ा सा कमा करके भी खुश रहता है, कहता दो रोटी खा रहे हैं, प्रभु के गुण गा रहे हैं, क्यों हम इधर उधर अपनी बुद्धि को भटकाएं। लोग कहते हैं ना ब्रह्मा कुमारियां जो हैं साहूकारों की सेवा करती हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो 80-90% लोग गांव के और बहुत गरीब और भोले बच्चे बाबा के हैं, और वो अपनी जीवन में रह करके जब ज्ञान और योग की धारणा करते हैं तो उनकी जितनी व्यर्थ बातें थी, खर्चे थे, देखा देखी के, दिखावे के, वो सब बच जाते हैं। और व्यसनों से बच जाते हैं, शराब, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, इनसे बच जाते, वो पैसा बचता है, देखा देखी का पैसा बचता है, इसने इतना खर्चा किया, मैं इतना खर्चा करूं, वो जितना है उतने में संतुष्ट रहता है, और उसको मैनेज करना सीखता है, पैसे को मैनेज करना, भाई हमारे पास इतना है तो मुझे कितना खर्च करना है, वो भी बाबा हमें समझ देता है, कितना सेवाओं में लगाना है, कितना परिवार में लगाना है, और जहां जहां व्यर्थ लीकेज पैसे की उसको रोकना है, तो वो भी एक साहूकार बन जाता है। तो हम सभी न धन के पीछे भाग रहे हैं, अगर भाग रहे हैं तो भटकेगा मन, एकाग्र नहीं होगा। इसलिए ध्यान देना। एक दिन बाबा के वरदान में आया मुरली के अंदर कि कई बच्चे सोचते हैं बाबा मेरी लाटरी लग जाए तो मैं आपको मदद करूं। बाबा ने क्या कहा था, बच्चे तेरे पैसे की मुझे जरूरत नहीं है, ऐसे लोभ लालच वाला पैसा नहीं चाहिए, तुम्हारी जो सच्ची कमाई है वो सफल करो, तुम जो कर रहे हो तुम्हारे परिवार को संभालते हुए सफल करो, वो समझ है। लेकिन ऐसे नहीं है मैं ये करूं कोई भ्रष्टाचार करके, कुछ ऐसे चोरी छुपे करके पैसा इकट्ठा करूं और वो सफल करूं, वो सफल नहीं होता, वो बाबा की यज्ञ में सफल नहीं होता, वो कहीं ना कहीं गलत रास्ते में जाएगा। इसलिए ध्यान देना, हम सबको धन के पीछे भागना नहीं है। जितना बाबा ने दिया बहुत कुछ है, उसको मैनेज करो, उसको सही रूप से परिवार की पालना भी करो, और ये भी समझ है, ये भी ज्ञान बाबा देता है कि उसको कुछ न कुछ अपने भविष्य के लिए इंश्योर्ड करो, माना ईश्वरीय सेवा में लगाओ, जिसके कारण आपको 21 जन्म की राजाई प्राप्त हो, उसमें कुछ आपको उसका रिटर्न मिले, उसकी समझ है। कोई कहे मैं तो गरीब हूं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तो बाबा कहता भले नहीं करो, ठीक है परिवार संभालो, लेकिन ध्यान देना, अगर गरीब कोई है, किसान है मान लो, और बीज बोने के समय वो कहे नहीं मेरे पास सही नहीं, अगर मैं बीज डाल के आऊंगा हम क्या खाएंगे, और बीज को पता नहीं उसको फल निकलेगा पौधा निकलेगा या नहीं, कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं सूखा पड़ जाए, कहीं चिड़िया खा जाए, अगर मान लो सोचता रह जाए और बीज न बोए तो क्या होगा, पछताएगा ना। जब सबकी फसल देखेगा अपनी जमीन पर उसने डाला ही नहीं है तो दुखी होगा, परेशान होगा, वो वृद्धि कैसे होगा। तो एक समझ बाबा ने दी है, बच्चे जो भी है उसमें कुछ भी कणा दाना निकालो और वो बाबा के काम में सफल करो। तो धन के पीछे भागना नहीं है, लेकिन धन को कैसे मैनेज करके सफल करना है वो बाबा ने हमें सिखाया है। एक धन के पीछे बुद्धि जाती है, दूसरी साधनों के पीछे बहुत भटकती है। इसके पास ऐसी गाड़ी है मेरे पास भी हो, इसके पास ऐसा भवन है मेरे पास भी हो। अब एक दूसरे के साथ अगर कोई भेंट करे, उसकी प्रारब्ध उसकी कमाई और मेरी कमाई में बहुत अंतर है मान लो, तो हम उससे भेंट करेंगे तो हम कभी शांत नहीं रह सकते, कुछ न कुछ हेरा फेरी करेंगे, कुछ न कुछ चोरी करेंगे, कुछ न कोई इधर गलत काम करें। जो कोई गलत काम करके पैसा इकट्ठा करता है वो कभी शांत नहीं रह सकता, उसका मन कभी एकाग्र नहीं रह सकता। विचार करना, वो ले आया है पैसा आ गया है, उसको कितना भय है कोई चोर ना आ जाए, कोई इनकम टैक्स वाला ना आ जाए, कुछ ये ना हो जाए, और जो सच्ची कमाई है मस्त रहता है, कुछ भी नहीं, बाबा की है, बाबा ने दिया है, दो रोटी खा रहे हैं। तो धन और साधन जितने हैं, एक बहुत अच्छा स्लोगन कहीं कहीं लिखा होता है, तुम अपनी इच्छाएं कम कर दो समस्याएं कम हो जाएंगी। आज जो समस्याओं के पीछे बहुत चिंतन चलता है, ये बात आई, ऐसी बात है, ये समस्या है, ये परिस्थिति, ये प्रॉब्लम, क्या होता है मन बार बार वहां जाता है। और बाबा कहता है मेरे बच्चों के आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम है कोई प्रॉब्लम क्या है, तो बाबा को दे के जाना, बोझ लेके नहीं जाना, हल्के हो जाओ। अगर कोई प्रॉब्लम्स को उठा करके चल रहे हो, गठरी को उठाए हुए हो, तो कभी भी हल्के होके उड़ोगे नहीं, मन मना वो होना बहुत मुश्किल है। हम हमेशा कहते हैं अगर कोई को मन बाबा में टिकाना है तो उसे चार विधियां बनानी पड़ेंगी, ऐसे नहीं टिकता है। पहले चाहिए बहुत अच्छे अच्छे सकारात्मक विचार, बहुत अच्छे, मैं बहुत खुश नसीब आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं बहुत भाग्यवान हूं जो भगवान मुझे मिल गया। विचार तो अच्छे अच्छे करो, ऐसे योग में बैठ जाओ सीधा सीधा मन भटक जाएगा। पहले उसको अच्छा चिंतन दो, कहते हैं चिंतन की धारा बदल दो आपका जीवन बदल जाएगा। हमारे चिंतन को चेंज करने के लिए बाबा ने हमारे ऊपर कितनी मेहनत की है, कितनी बार कहता बच्चे रोज मुरली सुनो, एक दिन भी मुरली मिस नहीं करो, मुरली आपके चिंतन को चेंज कर रही है। जीवन चेंज बाद में होगा, पहले चिंतन चेंज हो। अगर आपका चिंतन अशुद्ध है, ऐसे हैं वो ऐसे हैं, यहां ऐसे होता वहां ऐसे होता, जरा भी व्यर्थ और नेगेटिव चिंतन अगर है तो योग नहीं लगेगा। कितनी भी मेहनत करो मन मना भो नहीं हो सकेंगे, बैठ जाओगे एक घंटा ऐसे सफेद लाइट हो जाएगी, लाल लाइट से सफेद हो गई, कहाँ कहाँ भटक के आ गए पता ही नहीं चलेगा, टाइम वेस्ट। इसलिए ध्यान देना, इसके पीछे अपने को भटकाना नहीं है। बाबा आपने जो दिया है बहुत कुछ दिया, तृप्त हूं, संतुष्ट हूं, भरपूर हूं, क्यों इच्छाओं के पीछे मैं भटकूं, क्यों ये चाहिए वो चाहिए ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। तो न धन के पीछे, न साधनों के पीछे, न हद के संबंधों के पीछे और न मान शान के पीछे। कई बार इस समय इस ब्राह्मण बनने के बाद एक सूक्ष्म इच्छा जागृत होती है कि लोग, मैं इतना करता हूं, मैं तन से धन से मन से सब कुछ करता हूं, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं, कोई मुझे जानता ही नहीं है, हमारे सेंटर का तो नाम ही कहीं नहीं आता है। कई बार ऐसे ऐसे बहुत संकल्प विकल्प चलने लगते हैं। लेकिन बाबा कहता है जो मेरे बहुत गुप्त बच्चे हैं, जिन्होंने गुप्त रीति से अपना सब कुछ यज्ञ के प्रति बाबा के प्रति सफल किया है, जो दिल से बाबा कहते हैं वो मेरे दिल में रहते हैं, उनको मान शान की इच्छा नहीं होती। तो जहां पर मान शान की इच्छा है और वो नहीं पूर्ति होती है तो कभी भी मन एकाग नहीं होता, यहां मैं पूछा नहीं जाता, यहां मेरी इज्जत ही नहीं है, यहां मुझे कोई जानता ही नहीं है, ये हद की कामनाएं मन को भटकाती हैं। तो जहां जहां मन पहले भटकता है, मन मनाभव होने के पहले उसके भटकने को देखो, रोको, चेंज करो उसको। गति को मारना नहीं है, दबाना नहीं है, लेकिन मोल्ड तो कर सकते हैं हम। संकल्प माना चलेगा, एक दिन मैं बैठा था, मैं एक दिन की रमणीक बात सुनाता हूँ, यहाँ आंगन में बैठा था, छोटा था, आया था, मधुबन में रहता, 4-5 साल हुआ होगा मुझे यहाँ। तो जगदीश भाई हमारे बहुत एक्टिव थे, जानते होंगे जगदीश भाई को, जानते ना सभी, उन्होंने सारा साहित्य लिखा है। तो मधुबन में वो आंगन में ऐसे पैदल कर रहे थे, इधर से उधर से, सवेरे ऐसे बैठे थे और मैं भी वहीं थल्ले पर ऐसे बैठा, ऐसे शांत बैठा था, पता नहीं मैं क्या सोच रहा था, मुझे पता नहीं उस समय, लेकिन वो ऐसे आते चक्कर लगाते मुझे देखते रहे, गौर से देखते रहे, और फिर एक बार खड़े हो गए, बोलते हैं राजू, मैं यात्रा, हाँ भाई साहब, क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, ये प्रश्न किया। तो मेरे मुख से निकला, भाई साहब कुछ नहीं, वो तो बहुत तेज बुद्धि थी उनकी, बस कुछ नहीं, जब कह दिया तो खड़े खड़े मेरा 20 मिनट क्लास करा दिया। कहते कुछ नहीं माना आपका ब्रेन डेड हो गया है क्या, ऐसा कोई समय आता ही नहीं जो आत्मा सोचे नहीं, कुछ न कुछ सोचेगी। हाँ आपका अटेंशन नहीं हो सकता है, क्या अटेंशन नहीं, क्या सोच रहे हैं, जा रहा है इधर से उधर, भटक रहा है, घूम रहा है, खोए हुए हो आप वहां पर, लेकिन वो शांत हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो गया, शांत नहीं है वो तो भटके। कई बार बाबा कहते हैं ना, जब आप इस सृष्टि पर आए हो, शरीर लिया है, बाजा में आए हो शरीर में, तो मन कभी शांत नहीं, शांति तो शांति धाम में तुमको मिलेगी, यहां नहीं मिलती। बाबा कितनी गहरी गहरी बातें सुनाता है, कई बार हमारा ध्यान नहीं जाता। तो उन्होंने कहा कि संकल्प जो है वो पूरा कल्प चलता है, कल्प का नाम ही संकल्प के आधार से है। जब आत्मा ऊपर से इस सृष्टि मंच पर आती है, शरीर धारण करती है, उसका सोचना शुरू हो जाता है, उसको बाजा मिल जाता है। लेकिन किसी का ब्रेन वर्क न कर रहा हो, ब्रेन डेड हो गया हो, तो उसका सोचना बंद हो जाएगा। जैसे कोई कोमा में चला जाए, कोई अनकॉन्शियस हो जाए, तो क्या है, कोई सोच नहीं पा रहा है। जब आंख खुलती है तो उसको लगता है 10 दिन 20 दिन के बाद आंख खुली, पूछो कहां थे, कहे हमको कुछ पता नहीं कहां थे, कुछ याद नहीं है, मतलब वो सोचना बंद हो गया क्योंकि उसका ब्रेन उस समय डेड है। तो बाबा हम बच्चों को कहता है, संकल्प तो सारा कल्प चलता है, चलेगा, इसको रोकना मारना नहीं है, इसको मोड़ देना है। क्या किस में मोड़ो, अब यहां बैठे हो आप, अगर मान लो कहा जाता है आप योग करो तो कमेंट्री का सहारा लेते हैं, गीतों का सहारा लेते हैं, लेकिन मान लो ये सहारे नहीं रहे तो हम योग नहीं कर पाएंगे क्या। ये तो एक बेसिक बच्चों की बातें हैं, इसकी क्या जरूरत है। जहां दिल का प्यार होता है, बहुत स्नेह होता है, वहां योग लगाने में मेहनत होती है क्या। तो पहला है सकारात्मक श्रेष्ठ चिंतन, अच्छे अच्छे विचार करो, मैं कौन सी आत्मा हूं, क्यों भगवान की नजर मेरे पर पड़ी, किसने मुझे ढूंढा, किस लिए ढूंढा, बातें तो करो अपने आप से, श्रेष्ठ चिंतन होगा। और चिंतन करते करते उस बाबा के प्यार के सागर में खो जाओ। बाबा तूने मुझे अपना बनाया, तूने मुझे कीचड़ से निकाला। कलयुग के अंदर कहां कहां लोग भटक रहे हैं, कैसे कीचड़ में पड़े हैं, विकारों के अंदर लिप्त हैं। वैष्णों से छुड़ाया, विकारों से छुड़ाया, इस कलयुग में इतना सुंदर जीवन दी, क्या से क्या आपने मुझे बना दिया। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रूह रियान, बातें करो अपने आप से। और उसके अंदर इतना प्यार, जो प्यार एक मन को दिशा देने के लिए बहुत आवश्यक है। जिधर प्यार होगा, जिसके विषय में प्यार के संकल्प चलेंगे, उधर मन भाग जाएगा। तो बाबा से प्यार, सच्चा प्यार, दिल का प्यार, बाबा आप मुझे मिले, कलयुग में मिले, कलयुग के अंत में। लोग भगवान के लिए सोचते हैं पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे। आपने मुझे अपनी पहचान दी, अपने घर की पहचान दी, कर्मों की पहचान दी, पुनर्जन्म की पहचान दी, त्रिकालदर्शी बनाया, त्रिनेत्री बनाया, त्रिलोकीनाथ बना दिया, स्वदर्शन चक्र दे दिया, कितना श्रेष्ठ भाग्य है। और ऐसे करते एक तरफ ज्ञान चिंतन है और दूसरी तरफ प्यार में आत्मा समाई हुई है, मन एकाग्र हो जाएगा। मन मना भव होना बड़ा सहज है, लेकिन अगर कहीं प्यार भटक गया और कहीं चिंतन भटक गया तो योग नहीं लगेगा, मन एकाग्र नहीं होगा। तीसरी बात है, बहुत अच्छी खुशी के संकल्प करो, खुशी से, प्यार के साथ खुशी, जिसको कहते हैं उमंग उत्साह वाले संकल्प। और वो संकल्प खुशी और नशा, एक दो मुरलियां बाबा की चली हैं कि जैसे विमान को उड़ाने के लिए उसको डबल रिफाइंड पेट्रोल की जरूरत होती है, अगर ऐसा ही जनरल पेट्रोल डाल दिया जाए तो विमान उड़ेगा, ऐसी आप उड़ना चाहते हैं, साकार सृष्टि से पार जाना चाहते हो, तो आपकी बुद्धि को बहुत अच्छी नशे के, खुशी के, उमंगुसा के संकल्प चाहिए। वो पेट्रोल का काम करेंगे, उड़ाएंगे आपको, ले जाएंगे यहां से, बहुत हल्का बन जाओ। जैसे प्लेन उड़ता है तो वो जैसे हल्का होकर के भागता है, फिर ऊपर चला जाता है। ऐसे हम सभी भी अपने संकल्पों में खुशी, नशा, संगम युग का भाग्य, उसका चिंतन करते, उस प्यार के सागर में खोते हैं तो मन एकाग्र हो जाता है, फिर मन भटकता नहीं इधर उधर। मन के अंदर संकल्प है, वो शून्य नहीं है, वो जड़ नहीं है, संकल्प है, लेकिन बहुत सीमित संकल्प, अनुभव के संकल्प हैं। जैसे आज आप पहाड़ पर हैं तो आपको यहाँ अनुभव हो रहा है, यहाँ की शीतल हवाएं अनुभव हो रही है, यहाँ की शांति अनुभव हो रही है। आप सागर के किनारे चले जाएंगे तो वहां जो है वो वातावरण, उस वातावरण का अनुभव होने लगेगा। अगर बाबा प्यार का सागर है, शांति का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है, आप बैठे उसकी याद में, तो उसकी निशानी क्या है, कुछ तो लहरें आएंगी ना। योग ठीक लगा या नहीं लगा, मन स्थिर हुआ या नहीं हुआ, उसकी निशानी है वो अनुभव होने लगे। और अनुभव के संकल्प है, अनुभव हो रहा है या ठंडी है, शीतलता है, लेकिन दिखाई तो नहीं दे रहा है। अब उसका वर्णन किया जाएगा तो यही कहे भाई हमारे को बहुत थोड़ा ठंडक लग रहा है, ठंडा लग रहा है। ऐसे ही वो शांति की, पवित्रता की, स्नेह की जो लहरें हैं, बाबा के जो शक्तियां हैं, उनका अनुभव होने लगेगा आत्मा को, उस अनुभव में समा जाएगी। तो एक तो बहुत हल्के बनो, बड़ा अच्छा अच्छा चिंतन करो, खुशी के और नशे के संकल्प करो, और प्यार के सागर में समा जाओ। मन मना भाव, मन बाबा में स्थिर हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा, भटकना बंद कर देगा। इसलिए बाबा ने कहा यह महामंत्र है, इस मंत्र का इस स्वरूप बनो, सिर्फ चिंतन नहीं करो, मैं मन मना भाव, मन मना भाव। वो मंत्र जैसे देते हैं ना भक्ति वाले, कहते हैं किसी को सुनाना नहीं, मैं तुमको मंत्र देता हूं, क्या कहें, ओम 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 बोलते रहो, वो बार बार बोलते बोलते वो ओम का स्वरूप बन जाते हैं। तो ऐसे ही बाबा ने कहा मन मना भव का मंत्र मैंने तुमको दिया, इसे मन का भटकना बंद हो जाएगा। इन मन की गति को ध्यान से कंट्रोल करो, क्यों जा रहा है, किस लिए जा रहा है, क्या चाहिए, उसे बात तो करो, और बात करके उसको अच्छे अच्छे संकल्प दे दो। मुरली सुनो, वरदान सुनो, पढ़ो, चिंतन करो, ध्यान देना, इसको फ्री नहीं छोड़ना है, इसको कुछ न कुछ काम देना है। मैं बहुत ध्यान देता हूं इस बात पर, अगर हमने अपने मन को फिर इधर उधर छोड़ दिया, कोई अच्छा चिंतन नहीं दिया, तो इसके अंदर खुराफात के व्यर्थ संकल्प विकल्प आएंगे, कंप्लेन चलती रहेगी, क्या करूं मेरे बहुत व्यर्थ संकल्प चलते हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि तुमने उसको फ्री छोड़ा हुआ है। और कहते भी है ना, फ्री घर शैतान का डेरा, शैतान आएगा ही उसके अंदर, विकारी संकल्प विकल्प आएंगे। तो निसंकल्प समाधि नहीं है, ध्यान देना, निसंकल्प समाधि होती नहीं है। कोई कहे मैं निसंकल्प समाधि में चला गया, कितने दिन जाएगा? दो दिन, चार दिन खड्डे में बैठ जाए, प्राणायाम चढ़ा ले, आएगा साकार में, फिर वही भोजन, भूख लगेगी, संकल्प चलेंगे, श्वास लेगा, हिलेगा, डुलेगा, नहाएगा, कुछ भी करेगा, तो कर्म नहीं है क्या? सिर्फ उसने भोजन नहीं बनाया और कहता है मैं तो निष्काम हूं, निष्कर्म हूं, मैं कोई कामना नहीं मेरी, मेरे कोई कर्म नहीं है, मैं निसंकल्प हूं। तो बाबा कई बार कहते हैं निसंकल्प नहीं होता, निर्विकल्प बनो। जो विकल्प है, विकारी संकल्प है, देह के संबंध के विकारों के संकल्प बुरे संकल्प है, निर्विकल्प संकल्प हो सकते हैं, निर्विकल्प समाधि हो सकती है जिसमें कोई विकल्प ना हो। लेकिन ध्यान देना, जो कुछ इस पास्ट जीवन में बीत गया है वही आत्मा को बहुत परेशान करता है, इसलिए बीती को क्या कहते हैं? भूतकाल। भूतकाल पास्ट को भूतकाल कहते हैं ना हिंदी में। अब भूत तो परेशान करेगा ही ना, इसलिए भूतकाल माना जो बीत गई वो भूत है, उसको मुझे चिंतन में नहीं लाना, फुल स्टॉप लगाओ। जो कुछ हुआ है हम सब जानते हैं, बाबा भी जानता है, मेरे बच्चे देहमान के कारण, बॉडी कॉन्शियस में आने के कारण विकर्म कर रहे थे, एक एक की दिल को नहीं जानता, कहता मैं थॉट लीडर नहीं हूं, लेकिन जानता हूं कि इस समय सभी विकारी हैं, सभी पतित हैं, सबके संकल्प में विकल्प भरे हुए हैं, कोई भी ऐसे छूटा नहीं है, क्योंकि जब तक वो आत्माभिमानी स्टेज नहीं बनाई है तब तक वो विकल्पों पर जीत नहीं प्राप्त कर सकता। हम सब यही अभ्यास करें कि मैं इस शरीर से अलग हूं, मैं एक आत्मा हूं, मैं मन बुद्धि की मालिक हूं, संस्कार मेरे हैं। संकल्प करते हैं, बुद्धि उसको दृश्य मर्ज करती है, और कर्म में जब आ जाते हैं तो कर्म करते करते वो संस्कार बन जाते हैं, और जिससे संस्कार बन जाते हैं उन्हीं संस्कारों के अनुसार फिर प्रैक्टिकल में संकल्प चलने लगते हैं, और संकल्प के आधार से फिर बोल और कर्म होते हैं, और कर्म और बोल के बाद संस्कार बन जाते हैं। तो बीज को ठीक करना है, बीज को सुधारना है, बीज अगर ठीक है तो वृक्ष अच्छा हो जाएगा। कोई कहे कि मैं चाहता नहीं था, मेरे मुख से निकल गया, मैं चाहता नहीं था, मैंने बोल दिया, ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है, भले उस समय नहीं सोचा हो कुछ भी, लेकिन कभी तो उसके बारे में कुछ सोचा होगा, कभी तो उसके बारे में कुछ नेगेटिव चला होगा, जो गलत बोल उसको सामने देखते ही निकल गया, जोश में आ गए, उत्तेजित हो गए। संकल्प एक बहुत बड़ी शक्ति है, उसको पहचानो, और उस बीज को अगर सुधार दिया अच्छे अच्छे विचारों से तो बोल कभी गलत नहीं हो सकते। बोल में सरलता और मधुरता आती जाएगी। अगर कोई के बोल सरल और मधुर नहीं है, माना उसका अपने संकल्प पर ध्यान नहीं, संकल्पों को उसने परिवर्तन नहीं किया, अपनी दिशा को चेंज नहीं किया है, भले वो बाबा का बच्चा कितना पुराना हो गया हो, अगर संकल्प उसने कंट्रोल में नहीं लाए हैं, संकल्पों को अच्छा चिंतन नहीं मिला है, तो बोल में सुधार नहीं आता। कहते इतना समय से ज्ञान में है फिर भी ऐसे रफ बोलता है, कटु वचन बोलता है, कटाक्ष वाले बोल बोलता है, किसी के भी दिल को दुखा देता है। अगर हम बाबा के पक्के बच्चे बने हैं और संकल्पों पर हमारा ध्यान है कि हमारे बहुत अच्छे पवित्र संकल्प ही चलें, और आप सब जानते हो जो अच्छी चीज होती है ना क्वालिटी वाली, वो सीमित होती है, जो व्यर्थ होती है उसका बहुत ढेर होता है, अगर अच्छे संकल्प हमारे हैं, बहुत पवित्र शुद्ध संकल्प हैं, तो वो संख्या में सीमित होंगे, उनकी गति की स्पीड जो है बहुत सीमित होगी। ऐसे नहीं बहुत चल रहे हैं, बहुत भाग रहे हैं। जैसे कोई अधिक बोलता है तो क्या करेगा, कुछ न कुछ व्यर्थ बोल जाएगा। जो अधिक बोलता है, जोश में बोलता है, अपने बोल पर कंट्रोल नहीं कर पाता, वो कहता मैं तो बहुत अच्छा बोलता हूं, बाबा कहता अच्छा बोल ही नहीं सकता। इसलिए बाबा ने अपने बच्चों को महामंत्र दिया, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, जो जरूरी है वो बोलो। बाजा बजाओ जरूर, मुक्का बाजा है, लेकिन ऐसे नहीं बोलो। जैसे जवान के लिए मैं बता रहा था, एक तरफ कोई भी चीज देखती है लालच के बस, लोभ के बस, खा लिया, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, और अगर बोल दिया तो संबंध बिगड़ जाते हैं, बिना सोचे समझे बोल दिया। आज हर घर में जो टकराव पैदा हो रहा है, मनमुटाव हो रहा है, आज के 40 साल 50 साल पहले बचपन हम याद करते हैं, कहीं दो घर में भाई भाई लड़ते नहीं थे, माँ बाप को कभी बच्चे छोड़ के नहीं जाते थे। आज मोस्टली देखो माँ बाप बेचारे ऐसे ही पड़े हैं, शादी कर दिया, बहू आई और सहारा लेके चली गई, बच्चे को कहाँ ले गई पता ही नहीं, बच्चा भी उसके बस हो गया, दीन हो गया, कितने घर पिट गए। संबंधों में जो टकराव पैदा हुए, एक दूसरे को बोल बोल करके कमियां निकाल निकाल करके, इसके अंदर ये, इसने अंदर ये ऐसे करते, ये ऐसे करते, सारे घरों में झगड़े पैदा हो गए। तो बोल पर अगर कंट्रोल किसी का नहीं है, ध्यान देना, हमारे ब्राह्मण जीवन में बोल का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे वचन सत्य वचन हो, वरदानी बोल हो, जो बोले वो हो जाए। हमारी दादियों के वचन सुनना चाहते हैं, बाबा दादी कुछ बोलो। कोई कोई बोलता है तो कहते हैं ना बोले तो अच्छा है, किनारा करके चलो उसे। तो हम सब कम से कम बाबा के घर में भट्टी करने आए हैं। ध्यान देना, बोल एक बहुत बड़ी शक्ति है। एक बार बाबा ने गुलजार दादी की विशेषता सुनाई थी कि इतनी सब बहनें, संदेशियां बहुत थी बाबा के सामने, इस बच्ची को ही बाबा ने रथ क्यों बनाया। गुलजार दादी के लिए बाबा ने खुद सुनाया, उन्हीं के तन से सुनाया, इस बच्ची को क्यों भगवान ने चुना, क्योंकि इस बच्ची ने अपने संकल्प और बोल की एनर्जी को जमा कर लिया। एक भी संकल्प उन्होंने, कुछ भी हो रहा हो, संगठन में बैठी हैं, मीटिंग में बैठी हैं, जोन इंचार्ज हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब तक होगा, ये संकल्पों में जो व्यर्थ की क्यों लगती है, व्यर्थ संकल्प चलते हैं, उसका मूल कारण है प्रश्नात्मक बुद्धि। जहां आपके प्रश्न उठने लगेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है, इससे किसने किया, क्यों किया, कहां किया, कब किया, हल चलाएगी संकल्पों। लेकिन दादी जी ने इतना समय सब पार्ट बजाते हुए कभी भी व्यर्थ संकल्प नहीं चला, क्यों हो रहा, कैसा है, सब ड्रामा में ठीक है, पुलिस्टा। संकल्प शक्ति बचने के कारण उनकी एनर्जी ब्रेन की बच गई, और ब्रेन की एनर्जी बचने के कारण भगवान ने 14-14 घंटे बैठ करके उस ब्रेन को यूज किया। ब्रह्मा बाबा को अव्यक्त, शिव बाबा को, कोई को भी शरीर ही नहीं है तो ब्रेन कहां से आया, ब्रेन तो दादी का यूज हुआ है ना, और इतना ब्रेन यूज किया, अच्छी तरह से यूज किया, अच्छा ब्रेन चला है, जो आज अगर पूरा साहित्य 48 साल का जो बाबा की अव्यक्त मुरलियां हैं, किसके किसके पास अव्यक्त मुरलियों का स्टॉक है बताओ, है, सारी मुरलियां हमने प्रिंट कराई है, सब कुछ प्रिंटेड है, सॉफ्ट कॉपी भी है तो हार्ड कॉपी भी है। हम सबका एक लक्ष्य होना चाहिए, कितना ऊंचा ज्ञान, कितना सत्य ज्ञान और कितनी गहराई ज्ञान की धारणाओं की अव्यक्त रूप में बाबा ने अपने बच्चों के आगे स्पष्ट किए। दादी का ही ब्रेन यूज हुआ, क्यों यूज हुआ, क्योंकि उसने संकल्प की शक्ति को बचाया था। और बोला कितना बाबा ने, आप लोगों को शायद पुराने होंगे तो पता होगा, मैं तो पूरी पूरी रात बाबा के साथ बैठा हूं, कभी कभी डायरी कॉपी जो लेके जाता था ना, रात को बैठता था सुबह तक वो डायरी भर जाती थी, इतना बोला बाबा ने। पूरी पूरी रात बाबा ने बातें की है ना, बच्चों से मिले हैं अलग अलग, मुरली पहले छोटी चलाई, उसके बाद जब पर्सनल व्यक्तिगत मिलना शुरू किया है। एक दिन बाबा यहाँ ओम शांति भवन में आए और कहा केवल मधुबन वालों से मिलेंगे। तो मधुबन में हम लोग केवल उस समय 40-50 बहनें, 40 बहनें थी और 120 भाई थे, अभी तो हजारों में। हम बहुत खुश हो गए, चलो आज हम पूरी रात बाबा से मिलेंगे। ये 20 मार्च 1988 की बात है। उसके बाद बाबा ने पर्सनल मिलना बंद किया। तो रात को मुरली चली पहले थोड़ी देर, फिर बाबा ने मिलना शुरू किया और मिलते मिलते सुबह 7 बजे मेरा टर्न आया। 120 भाइयों में लास्ट टर्न में मैं बाबा के सामने बैठा था और दादी आई मिलने, विदाई देने बाबा को। तो बोलती है, रात भर तुम लोग क्या कर रहे थे बाबा के साथ? बहनें रह गई पूरी, केवल भाई मिले। तो जब मैं बाबा से मिलके उठा तो दादी ने मेरे को अलग से बुलाया, पूछा बाबा ने रात भर क्या बोला है इतना। मैं, दादी बहुत वरदान दिए हैं एक एक को, एक एक को 25 मिनट आधा घंटा दिया, दृष्टि भी दी, बातें भी की, सब कुछ ऐसे सुनाया, और मैं सबका लिखता गया। उस समय टेप रिकॉर्ड मेरे पास नहीं थी, हाथ से लिखा सारा। 120 भाइयों का इतना लिखा, इतना। तो दादी को मैंने जब बोला, दादी आज बाबा ने रात भर वरदान दिए, तो मेरे कहती, अच्छा तुम जा करके टाइप करके ले आओ मेरे पास। अब मैं दूसरे दिन पूरा दिन लगा टाइप करने बैठा, पूरी डायरी भर गई थी। तो जब टाइप करके ले गया, दादी कहती क्या करेगा इसको? तो मैंने, दादी जिसको बोला है ना उसको टाइप करके, उसका फोटो भी निकला है, फोटो सही देते हैं, सब अपने अपने डिपार्टमेंट में लगा लेंगे। तो दादी कहती, अच्छा इतना स्वार्थ है, तुम लोगों को ही बोला है क्या? ये सारे ब्राह्मणों को बोला है, तुम कुछ ऐसा युक्ति रचो जो सबको ये मिलना चाहिए। कैसे मिलेगा? तुम इसको शॉर्ट करो, छोटे मन बनाओ, वरदान का रूप बनाओ, क्योंकि बाबा ने भाव करके तो नहीं बोला। तो जब मैंने उनको बनाया वरदान का रूप, कि मुरली के नीचे लिखना है तो 4-6 लाइन से ज्यादा तो लिखेंगे तो मुरली काटनी पड़े, मुरली नहीं काटनी है। 4-6 लाइन में उसको वरदान का रूप दिया हमने, वो 120 वरदान 365 दिन तक चला दिए, 365 दिन चलते रहे। और जब लास्ट में दादी के पास गया, दादी वरदान पूरे हो गए, तो कहती, अच्छा बस पूरे हो गए, इतनी मुरलियां चली हो वरदान नहीं है क्या? तुम सारी मुरलियों का स्टडी करो, सब में से वरदान निकालो। तो आज तक चल ही रहे हो बाबा के कुछ वरदान अभी रिपीट है, लेकिन 6 साल तक एक भी वरदान रिपीट नहीं हुआ, तो मुरलियों में वरदान आने लगे। तो बाबा इतना बोला है और सब कुछ समर्थ और शक्तिशाली बोल बोला, लेकिन कैसे बोला? उस बच्ची के बोल की एनर्जी को यूज किया। इसलिए बाबा कहता है, बच्चे भगवान के काम में आ जाओ, उसके लिए अपनी इस एनर्जी को बचाओ। क्यों सोच रहे हो क्या मिलने वाला है? ये ऐसा करा, वो ऐसा करा, ये सरकार ऐसे करे, वो ऐसे करे, अरे मेरा क्या लेना देना है? लेना देना कुछ नहीं है, प्रपंच बहुत है। इसलिए ध्यान देना, जिन बातों से मेरा कोई अर्थ नहीं है, मिलन नहीं, कुछ प्राप्ति नहीं, उसमें मैं अपनी एनर्जी क्यों लगा रहा हूं? ये समझ है क्या मेरी? यही ज्ञान बाबा ने दिया है क्या? मैं तो नहीं समाचार सुनता। एक दिन मेरे को फोन आता है, पंजाब से हरियाणा में हमारी ट्रेनिंग थी भाई साहब, ट्रेनिंग में 150 लोग आने वाले थे, 80 लोग कट गए हैं, 50-60 आदमी। क्यों? यहां बहुत हंगामा है हरियाणा में। क्या हंगामा है? आपने न्यूज नहीं देखी? मुझे नहीं पता है भाई क्या हुआ है। बाद में कहती, इतना हंगामा है, सब जगह कर्फ्यू लगा हुआ है, गुड़गांव में कर्फ्यू, यहां कर्फ्यू, लोगों ने अपने टिकट कैंसिल करा दिए, नहीं आ रहे। तब मैंने को न्यूज का पता चला। ठीक है, समाचार होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, लेकिन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? सब कलयुग के अंत में तो होना ही है ना, अति में जाना है, अंत होना है, इसलिए सब कुछ होने वाला है। तो हम अपने संकल्प की एनर्जी को क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? ऐसे नहीं होता तो ऐसे हो जाता, ये सरकार होती तो ये हो जाता, कोई भी आएगा कितना भी अच्छा आएगा। गिरावट का समय है, पतन का समय है, कलयुग के अंतिम समय में हम बढ़ रहे हैं। कोई बूढ़ा हो गया उसको बच्चा तो नहीं बनाया जा सकता, जब तक वो शरीर नहीं छोड़ेगा तब तक तो बच्चा नहीं बनेगा ना। अब सृष्टि बूढ़ी हो गई है, उसको आप बच्चा बनाना चाहते हो, जवान बनाना चाहते हो, उसको छोड़ने दो, छोड़ करके फिर बन जाएगी नहीं। तो कलयुग का अंतिम समय है, सृष्टि अति की ओर जा रही है, सब बातों में अति होगी, सबके सामने हिसाब किताब आएंगे, अच्छे अच्छे योगियों के सामने भी आएंगे, बड़ों के सामने भी, छोटों। मैं अपने संकल्प की एनर्जी क्यों व्यर्थ कर रहा हूं, ये ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, यहां इस सेंटर पर ऐसे हुआ, उस सेंटर पर ऐसे हुआ, उस बहन ने ऐसे। बाबा कहता तू अपने टाइम को सफल कर, अपने संकल्प और अपने समय की शक्ति को बचाओ, और धन की शक्ति जितना बचत कर सकते हो वो बाबा के अच्छे काम में, परिवर्तन के काम में, ईश्वरीय सेवा में लग जाए, ट्रांसफर हो जाएगी। ये समझ है, और जिसने इन शक्तियों को बचाया है वो सहज मन मना भव हो सकते हैं, मन एकाग्र हो जाएगा, भटकेगा नहीं, बहुत अच्छा मन है, ये सुमन है, आपको यात्रा अच्छी कराएगी। बैठे अपने घर में है, चलो मधुबन के चार धाम की यात्रा करके आते हैं, बाबा के कमरे में आ जाओ, बाबा की कुटिया में आ जाओ, बाबा के हिस्ट्री हाल में आ जाओ, बाबा के स्तंभ पर आ जाओ, शक्ति लो, सकास लो, लाइट लो। कौन जाएगा, कौन जाएगा, टिकट खर्च करना नहीं है, मन ही जाएगा, आत्मा भी नहीं जाएगा, आत्मा तो शरीर में रहेगी, उसकी संकल्प शक्ति वहां पहुंचती है। आज हम वतन में गए, आज हम ये संदेश दे, बाबा ने ये कहा, ये कहा, कौन गया, आत्मा निकल के गई क्या? उसकी संकल्प शक्ति, यहां के संकल्पों को मर्ज किया, वहां के संकल्प ही मर्ज हो गए, आत्मा निकल के थोड़ी जाती थी, निकल जाएगी तो शरीर पानी में मिट्टी हो जाएगा। मन के संकल्पों से कभी पांच स्वरूपों के दिल करो, अपने अनादि स्वरूप में स्थित हो जाओ, परम नाम घर का अनुभव करो, कभी आदि स्वरूप में स्थित हो जाओ, देव स्वरूप का अनुभव करो, कभी भक्ति में चले जाओ, अपने पूज्य स्वरूप का अनुभव करो, कभी संगम पर आ जाओ, पूरे ब्राह्मण परिवार में पूर्व स्वरूप का अनुभव करो, कभी फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करो। तो ये ड्रिल है, ये अभ्यास है, लेकिन करेगा कौन, मन शक्तिशाली वही करेगा। अगर मन भटक रहा है, मन पर कंट्रोल नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकते हो, इसलिए ध्यान देना है, अटेंशन, हमारे संकल्प हमारे कंट्रोल में रहें, और जो हमारे संकल्पों को भटकाने वाली चीजें हैं, आज की साइंस के युग में सब चीजें मन को भटकाने वाली हैं, बहुत ध्यान देना। आज इंटरनेट हाथ में आ गया, मोबाइल के द्वारा क्या नहीं हो रहा है, अच्छे काम के लिए भी है और उसके द्वारा अश्लीलता भी फैल रही है, कितने गलत काम भी हो रहे हैं, इसलिए हमें वही साधन यूज करने हैं जिसमें हमारा मन स्थिर रहे, एकाग्र रहे। बाकी और कोई भी साधन है, सब हाथ में है, लेकिन बाबा कहता बच्चे इतना कंट्रोल हो कि मुझे नहीं देखना है, मेरे काम की चीजें नहीं है। जिस रास्ते को हम छोड़ चले उस रास्ते को मुड़ के देखना नहीं है। जब हमने संकल्प ले लिया कि हम पवित्र और योगी जीवन बनाएंगे, तो जो विचारों को अपवित्र बनाने वाले संकल्प हैं, चीजें हैं, वस्तुएं हैं, उनको देखते भी नहीं देखना, बाबा की मना है, बाउंड्री लगा दी बाबा ने। तो ध्यान देना, एक पास्ट की बातों का चिंतन या ऐसी अश्लील बातों का चिंतन मन को भटका देता है, वो एकाग्र होने नहीं देता, और बाबा की मुरलियों का, सोमानों का चिंतन करो, मन मना भव हो जाओगे। अच्छा सोमान ले लो, अभी समय हो रहा है, मैं आधा घंटा योग करूंगा आपके साथ, सोमान ले लो, मैं आत्मा इस मस्तक के बीच में विराजमान एक बहुत सुंदर चमकती हुई मणि हूं, भ्रकुटी के बीच में बैठा हुआ सितारा, मैं बाबा आपके नैनों की नूर हूं, नूर नहीं तो जहान नहीं, बाबा मैं आपके दिल का मालिक दिल तक नसीन हूं, बाबा मैं आपकी राइट हैंड भुजा हूं, बाबा मैं आपके साथ कंबाइंड शिव शक्ति हूं, भिन्न भिन्न सोमान है, जिस सोमान में बैठो 5-5 मिनट एक सोमान में बैठ जाओ 25 मिनट तो ऐसे निकल जाएंगे, कहां मन भटक के जाएगा। लेकिन ऐसे सीधा सीधा मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, शांति धाम के निवासी हूं, एक ही सामान लिया और थोड़े देर के बाद शांति में चले जाओगे, मन भटक जाएगा। इसलिए बाबा कहता है कुछ नवीनता करो, कुछ वैरायटी करो, कुछ अच्छे उमंग उत्साह के संकल्प करो, खुशी के संकल्प करो। हमारा योग नीरस नहीं है, सूखा सूखा नहीं है, चेहरे पर उदासी वाला नहीं है, मौज का है, बड़े अच्छे अच्छे संकल्प है, रमणीकता है उसके अंदर। अगर पुरुषार्थ में रमणीकता नहीं है तो वो पुरुषार्थ निरंतर नहीं हो सकता। इसलिए सभी चलो अपनी भ्रकुटी आसन पर मस्तक मणि बन करके बैठो। कभी ये मणि यहां है, कभी बाबा की मणि को भी अपने साथ ले आओ, यहां बिठा लो। बैठ सकते हैं ना दो जने इकट्ठे के? नहीं, बहुत सारे बैठ जाते हैं, ध्यान देना। शिव बाबा को बिठा सकते हो, लेकिन वो तभी बैठेगा जब बहुत मन शीतल शांत पवित्र शुद्ध होगा। इसके अंदर जरा भी अशुद्धि है, अस्वच्छता है, तो परम पवित्र को यहां नहीं बिठा सकते, कंबाइंड नहीं हो सकते। भले बाबा कहता अपने साथ मुझे कंबाइंड अनुभव करो, लेकिन वो कंबाइंड ऐसे नहीं होता, समान होंगे तभी कंबाइंड होगा। तो चलो अभी सभी देखो अपने स्वरूप का चिंतन करो। मैं एक बहुत पवित्र शुद्ध चमकती हुई मणि इस भ्रकुटी पर विराजमान हूं, और बाबा भी परमधाम में इसी स्वरूप में चमक रहा है, उसकी लाइट यहां आ रही है, वो खुद आ रहा है और मेरे साथ कंबाइंड है। उसकी पवित्रता की किरणें, शांति की किरणें, सुख की किरणें, आनंद की किरणें मुझ आत्मा को भी उसी स्थिति का अनुभव करा रही है। चलो हम सभी योग करते हैं, अभ्यास करते हैं। कितना समय मन एकाग्र रहता है फिर अनुभव बताना। सभी अपने स्वरूप का अनुभव करो। इस भ्रकुटी की गुफा में मैं एक चमकता हुआ दिव्य सितारा, अपने परम पवित्र परम प्रिय परम ज्योति सर्वशक्तिमान शिव बाबा के चमकते हुए स्वरूप को देखते हुए दिव्य नेत्र से अनुभव करो। वो परम ज्योति मुझ आत्मा के साथ कंबाइंड है। मैं उनके समान मास्टर पतित पावनी मास्टर शांति का सागर मास्टर प्यार का सागर अपनी पवित्र किरणी इस पूरे वायुमंडल में फैलते हुए अनुभव करो। कुछ क्षण के लिए उस प्यार के सागर में समा जाओ। असीम शीतलता का, शांति का, परमानंद का अनुभव करो। अपने चारों ओर एक बहुत सुंदर लाइट का चमकता हुआ शरीर जो मैंने अपने पवित्र शुद्ध संकल्पों से क्रिएट किया है, उस सूक्ष्म शरीर से, लाइट के शरीर से इस साकार वतन से, पांच तत्वों की दुनिया से दूर मैं अपने लाइट के वतन में, अव्यक्त वतन में बाप दादा के सन्मुख बाबा के मस्तक से उनके दोनों नैनों से निकलने वाली दिव्य शक्तियां मुझ आत्मा को संपूर्ण फरिश्ता बना रही, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं, सर्वशक्तियों से संपन्न, मैं फरिश्ता इस विश्व कल्याण की सेवा के लिए बाप दादा के साथ अव्यक्त वतन से सकाश दे रही हूं। अनेक आत्माएं जो भगवान को पुकार रही हैं, अपने इष्ट देव की आराधना कर रही है, मैं फरिश्ता उन सर्व आत्माओं की मनोकामना पूर्ण करने के लिए शक्ति शांति की सकाश दे रहा हूं। अव्यक्त वतन की सैर करके अब मैं आत्मा अपने निज धाम में अपने स्वीट साइलेंस होम में उस सुनहरे लाल प्रकाश के मध्य ज्ञान सूर्य बाबा के बिल्कुल निकट अपने निराकारी स्वरूप में स्थित परम धाम घर की असीम शांति का पवित्रता का अनुभव कर रही हूं। सभी संकल्पों को इस अनुभव में समा दो, लव में लीन हो जाओ। परम धाम घर की अनुभूति के बाद इस साकार वतन में संगम के सुहावने समय में श्रेष्ठ कर्म करने के लिए मैं आत्मा इस साकार तन में अवतरित हुई हूं। मैंने शरीर आधार लिया है, मैं आत्मा मन बुद्धि सर्व इंद्रियों की मालिक हूं। विश्व परिवर्तन की महान कार्य के लिए मुझे ये शरीर मिला है। सर्वशक्तियों से संपन्न, सर्व प्राप्तियों से संपन्न, सर्व हद की कामनाओं से मुक्त एक परम पवित्र आत्मा, स्वतंत्र आत्मा,
कैसी रही अनुभूति आप सभी की? बहुत पावरफुल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे लिए खास अपना अमूल्य समय निकाल कर आए। बारंबार शुक्रिया, आभार, धन्यवाद।